ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि यमन में निमिषा प्रिया का मामला संवेदनशील है। सरकार इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार ने परिवार की सहायता के लिए एक वकील भी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमित रूप से काउंसलर की व्यवस्था की है और स्थानीय अधिकारियों तथा परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने कल निमिषा की सजा पर कार्रवाई स्थगित कर दी।
This is a very sensitive matter and the government of India has been offering all possible assistance in the case. We have provided legal assistance and also appointed a lawyer to assist the family. We have also arranged for regular consular visits by a family and we are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this issue.
भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और अगले दौर की वार्ता फरवरी में दिल्ली में होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से प्रधानमंत्री कृषि धनधान्य योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने की अपील की है। बिहार के समस्तीपुर में एक समारोह में श्री चौहान ने कहा कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों का चयन किया गया है। योजना को कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि बिहार के जिलों को भी योजना में शामिल किया गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने पिछले 11 वर्षों में लगभग 1600 ऐसे नियमों को समाप्त कर दिया है जो नागरिक केंद्रित नहीं थे। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रोधी उपायों और सुव्यवस्थित प्रशासन के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सरल बनाने पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जयपुर में सहकारिता की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सहकारिता तथा रोजगार उत्सव में श्री शाह ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में देश के विकास में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक देश की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर 9% रह जाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से भारत का निर्यात 1.5 गुना बढ़ जाएगा।
वेस्ट टू वेल्थ, अब परली से इथेनॉल बन रहा है, परली से सीएनजी बन रहा है, परली से एविएशन फ्यूल बन रही है, तो धीरे धीरे हमारे देश को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करना, फॉसिल फ्यूल के प्रदूषण से मुक्त करना, ट्रैफिक जाम से मुक्त करना और उसके साथ साथ इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इकोनॉमी को भी मजबूत करना, ये हमारा मिशन है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार आज नई दिल्ली में प्रदान किए। मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। सूरत दूसरे स्थान पर रहा जबकि नवी मुंबई को तीसरा स्थान हासिल हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित उल्फा इंडिपेंडेंट उग्रवादी समूह के आईईडी की बरामदगी के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिकरण ने कहा कि ये उपकरण गुवाहाटी के दिसपुर में मिला था। ये पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर असम में कई विस्फोट करने के बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। बिहार सरकार ने राज्य में सभी उपभोक्ताओं को अगले महीने की 1 तारीख से 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के लिए केरल, माहे और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।